शिक्षा में स्थानीय परिवेश का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चा अपने स्वयं के पर्यावरण में ही बड़ा होता है, उसी से सीखता है और उसी पे निर्भर रहता है और उसी से अपनी उसी को अपनी ओर से सब कुछ देता भी है। लेकिन हम देखते हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए तमाम तरह से किसी भी चीज का दोहन कर लेते हैं और उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। हमारी शिक्षा तभी सार्थक हो सकती है जब स्थानीय पर्यावरण से मेल खाती हो और विद्यालय के आसपास के जो सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ी हुई हो। प्राथमिक स्तर पर तो हम देखते हैं कि बालक को अपने पर्यावरण के साथ सीधा संबंध होता है, जुड़ा रहता है, लेकिन वह ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है, वह दूर के पर्यावरण में उसकी रुचि बढ़ती जाती है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता जाता है और माध्यमिक कक्षाओं में आने तक वह पर्यावरण की समस्याओं की जटिलता को समझने लगता है। अतः उसके पाठ्यक्रम में गंभीर विषय भी आ सकते हैं जो बच्चों की व्यक्तिगत आदतें होती हैं, उसकी जगह अब तीसरी दुनिया की बढ़ती हुई आबादी का अध्ययन किया जा सकता है। वन विनाश के जो गंभीर परिणामों पर भी उससे बात की जा सकती है। संचार साधनों ने आज संसार को सिमटने पर बाध्य कर दिया है। ऐसे में विश्व की जो समस्याएं हैं हमारी चिंता का विषय होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ भी एक खतरा अवश्य है। क्या यह विश्व चिंता कहीं हमें अपने स्वयं के परिवेश से काट कर रख न दे? इस समस्या को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे गांव के बच्चे हैं, अपने घरों के धुओं की समस्याओं की बात उनके गले नहीं उतरती, अर्थात वो उसको समस्या नहीं समझते हैं। झोपड़ियों में काम करने वाले उपलों व लकड़ियों की ऊर्जा के स्थान पर सारा ध्यान बिजली के बारे में केंद्रित करते हैं और दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अपना अध्ययन इस पर केंद्रित नहीं करते। तो इन चीज़ों में हमें एक संतुलन बैठाना होगा, तभी हम इन समस्याओं के कारण पे विचार कर पाएंगे और समाधान खोज पाएंगे। अब बात आ रही है कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत गंभीर विषय है, ये चिंतन का विषय है, तो हम क्या करें? हम शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, तो समाज में कोई भी बदलाव हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है ये वर्तमान समय की सबसे चिंतनीय बिंदु है, सबसे चिंतनीय स्थिति है। इस चिंतनीय स्थिति से निपटने के लिए शिक्षा को आगे आना होगा। पर्यावरण संकट और प्रकोप से जो जानमाल की क्षति हम देख रहे हैं, परंतु इससे कुछ लाभ भी होते हैं। जैसे प्राकृतिक संकट से बाढ़ आती है जिससे बाढ़ क्षेत्र की भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती है, भूस्खलन से कभी कभी झील या जलाशय बन जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट की लावा भूमि को उपजाऊ भी बनाती है। भूकंप और भूचाल से पृथ्वी के अंदर के पानी में रुकावट आने से पानी स्थानीय हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो जो प्राकृतिक संकट है इसको रोका नहीं जा सकता और न ही कम किया जा सकता है, बल्कि भविष्यवाणी से सावधानी कर सकते हैं और उसके बाद राहत कार्य से संकटग्रस्त व्यक्तियों को उभार सकते हैं। इसके लिए पर्यावरणीय प्रबंध योजना जो बनाई गई है वह सही है, जिससे कार्यों का मैंने पहले बताया आपको, इसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका ही होती है। शिक्षा का आधार अधिक व्यापक होना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक, प्रकाशक, इंजीनियर, नीति निर्धारक तथा जनसाधारण तक ये बात पहुंचे। इसके लिए संचार माध्यमों में समाचार पत्रों, रेडियो तथा दूरदर्शन, चलचित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सरकार का उत्तरदायित्व तो है कि इन्हें काम करने की दिशा में कुछ ठोस प्रबंध करे। और कुछ सोपान मैं और बता रही हूँ, जैसे शिक्षा से सभी को संकटों और की जानकारी देनी चाहिए और सचेतना का विकास करना चाहिए। समस्या क्षेत्र को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आप देखते होंगे आजकल ऐसा किया भी जा रहा है। दूसरी बात कह रही हूँ कि इन घटनाओं के रोकने की पूरी सूचना सभी को पहुंचनी चाहिए। इसके लिए सभी संचार माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए जिससे प्रत्येक सावधान हो जाए, सुरक्षा उपाय कर सकें तथा मानसिक रूप में भी तैयार हो जाए। तीसरी बात, तत्काल राहत की विधियों को समझाना चाहिए जिससे संकट के प्रभाव को कम किया जा सके। इन इन संकटों के प्रति अभिवृत्ति तथा प्रत्यक्षीकरण भी बदलना चाहिए। और चौथी बात, मनुष्य को निर्माण कार्य में सुधार के प्रयास करने चाहिए। संकट क्षेत्र में मकान, भवन आदि इस प्रकार के बनाने चाहिए जिससे इन घटनाओं में से उसकी क्षति ना हो सके और संकट से बचाव हुआ रहे। अगली बात कि संकट संबंधी राहत कार्यक्रमों की प्रभावशीलता आकलन भी किया जाए कि बांध परियोजनाओं, जलाशयों, कारखानों, वन कटाव का कुप्रभाव कितना और कहां पड़ा है। अगली बात, शिक्षा द्वारा व्यक्तियों को नैतिक और धार्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। आर्थिक मूल्यों को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। आजकल क्या होता है, हम अपनी जेब भरने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं और चाहते हैं कि अधिक से अधिक पैसा कमा लें, आर्थिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको सबको थोड़ा थोड़ा उसको कम करना होगा। यहाँ स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, अपितु पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पर्यावरण शिक्षा जो आप ग्रहण कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण जो मैं आपको बता रही हूँ, मात्र कागजी कार्यवाही में ना हो करके इसको आप अप्लाई करें प्रयोगात्मक तरीके से अपने जीवन में भी, क्योंकि जितनी इसकी जड़ें अधिक गहरी हैं, हमारे शैक्षिक एवं बौद्धिक प्रयासों का जो उल्लेख वेदों इत्यादि में मिला है, आपको पता है कि वेदों में जो वन है, वन को वन देवता कहा गया है। ऋग्वेद में पौधों, पशुओं, पक्षियों की पूजा का विधान किया गया है। ये जो हम लोग करते हैं, पीपल की पूजा, बरगद की पूजा, सूर्य को जल दे अर्घ देना, ये सारी चीज़ें ये एक तरीके से पर्यावरणिक आधार ही हैं, पर्यावरण को संतुलित रखने का ही आधार है। लेकिन वैज्ञानिकता की ओर पहुँचने के कारण हमने धीरे धीरे इसको छोड़ दिया और उन्हीं चीज़ों को लिया जिससे हमारा स्वार्थ बना हुआ है। हमें करना चाहिए कि जो पूजा का विधान था वो उसको बना रहे और इनका संरक्षण हो सके और पर्यावरण की गुणवत्ता भी बनी रहे। मनुष्य पर्यावरण के लिए कोई अलग वस्तु तो नहीं है, ये बात सही है, लेकिन यदि प्रकृति और भौतिक पर्यावरण को वह क्षति पहुंचाता है तो वह उसकी स्वयं की हानि निश्चित है। कहते हैं ना कि हम भी डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम किसी के लिए जाल बिछाते हैं तो उस जाल में स्वयं भी फंसते हैं। वेदों के अनुसार मनुष्य तथा पर्यावरण ये परस्पर अंतर निर्भर हैं, तो एक दूसरे के लिए दयालु भी हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करें। जो पशु और देवता हैं इनको पशुओं को देवताओं का वाहन माना गया, आपको पता ही है, और उनकी पूजा की जाती है। कुछ पौधे भी की हिंदू पूजा करते हैं, जैसे इस समय तुलसी, गिलोय, ये सारी जो जड़ी बूटियां हैं इस समय कोरोना में काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। तो अगर ये रहती ही नहीं तो कहाँ से आपको मिलती, तो और जब मिलती ही नहीं तो महामारी से कहाँ से आप लड़ते। ये चीज़ें, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो पारिस्थितिकी है उनके लिए एक पवित्र विज्ञान है। और जो वैदिक युग है हमारा, उसमें जो व्यक्ति हैं सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण से हमारी सुरक्षा करते हैं। केवल पर्यावरण का संरक्षण ही नहीं करते अपितु हवन तथा यज्ञ से उसे अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। जिन धार्मिक मूल्यों की हम बात करते हैं, उन धार्मिक मूल्यों में हम संविधा के द्वारा एक विशेष लकड़ी, आम की लकड़ी के द्वारा ही क्यों हवन करते हैं, आपको पता है? आपने ध्यान दिया कभी इस बात पे? नहीं। उससे करने के कारण जो पर्यावरणिक विघटन है वह विघटन संगठन में बदल जाता है और उसके दोष दूर होते चलते हैं। तो जो भी विधान किया गया है पूर्व में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, वो सब अच्छी चीज़ है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के कारण अपने हिसाब से किसी चीज़ को यूज करते चलते हैं, वो गलत है। तो जो नैतिक और धार्मिक मान्यताएँ हैं और मूल्य है, इनको हम फिर से अपनाएं और अपने आदर्श जीवन को बनाएं और इसमें पर्यावरण को उत्तम तरीके से उसकी गुणवत्ता बना के स्वयं भी अच्छे से रहें और दूसरे को भी अच्छे से रहने की प्रेरणा दें। ख़ास तौर से मैं कहूँगी कि शिक्षकों का ये विशेष दायित्व है, अपने बातचीत में भी अगर वो मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं, अपने आचरण में भी मूल्यों को दिखा प्रदर्शित करते हैं, जिससे छात्र उस देख रहे हों तो वो निश्चित ही इसे अपनाएंगे और पर्यावरण प्रदूषण से बचेगा देश, और जो सब हमारा एक अच्छा पर्यावरण बनेगा वो पर्यावरण आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बढ़िया संदेश देगा।